हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है मॉर्निंग शो भागवतम क्लास के अंदर। ये बलि महाराज का प्रसंग चल रहा है जो कि आत्मनिवेदन के आचार्य हैं, इसलिए ठाकुर भक्ति विनोद ने एक भजन लिखा है, आत्मनिवेदन तुआ पदे करी हरि नु परम सुखी। तो मैंने सोचा बहुत रेलिवेंट रहेगा इस थीम के लिए। इस भजन का अर्थ इस प्रकार से है, आपके चरण कमलों में अपने को पूर्णतया शरणागत करके मैं सुखी हो गया हूँ। अब मेरा भौतिक क्लेश दूर हो चुका है, अतः मैं समस्त व्याकुलताओं से मुक्त हूँ। चारों दिशाओं में जहाँ भी मैं देखता हूँ मुझे प्रसन्नता ही दिखाई देती है। आपके यह दो चरण कमल शोक तथा भय से मुक्ति दिलाते हैं, ये दिव्य अमृत के कुंड हैं। मैंने इन चरण कमलों की शरण ग्रहण करके भौतिक जीवन के समस्त भय को छोड़ दिया है। मैं एकमात्र आपकी सेवा में व्यस्त रहूंगा तथा बदले में कभी भी कुछ नहीं मांगूंगा। आपके चरण कमलों में अनुराग रखते हुए मैं आपको सुख देने का श्रेष्ठतम प्रयास करूंगा। आपकी सेवा संपादन करते हुए जितनी भी कठिनाइयां आएंगी वे वास्तव में महान आनंद का कारण होंगी। आपकी सेवा में वचनबद्धता के दौरान जो भी सुख तथा दुख मिलता है वह महान संपत्ति है। वास्तव में ऐसे सुख एवं दुख अज्ञान जनित क्लेशों को नष्ट कर देते हैं। आपकी सेवा में आने वाले आनंद का अनुभव करने के पश्चात मैं अपना पूर्व इतिहास भूल गया हूँ। मैं आपका दास हूँ तथा आप मेरे स्वामी हैं। किसी दूसरी संपत्ति की लालसा रखने से क्या लाभ। आपकी सेवा में तत्पर रहते हुए श्रील भक्तिराम ठाकुर आनंद रूपी समुद्र में डूब रहे हैं। आपकी प्रसन्नता हेतु वे आपके परिवार में रह रहे हैं एवं सब प्रकार से आपकी सेवा में व्यस्त हैं। जय श्री भक्तिराम ठाकुर की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 8 अध्याय 20 बलि महाराज द्वारा ब्रह्मांड समर्पण, श्लोक संख्या 5 और 6। ऐसे तो 5 में तात्पर्य नहीं है लेकिन कुछ महत्वपूर्ण वर्ड थे इसलिए मैंने बोर्ड पर लिखवाया है, लेकिन आप भक्त छठा ही रिपीट कीजिएगा हमारे पीछे। यद्यध्यास्यति लोके अस्मिन् परेतम धनादिकम् अस्मिन् संपरेतम् धनादिकम् तस्य त्यागे निमित्तम् किम् विप्रस्तुष्येन तेन चेत् यद्यधास्यति लोके अस्मिन् संपरेतम् धनादिकम् तस्य त्यागे निमित्तम् किम् विप्रस्तुष्येन तेन चेत्। यद्यधास्यति लोके अस्मिन् संपरेतम् धनादिकम् यद्यधास्यति लोकेस्मिन् संपरेतम् धनादिकम् तस्य त्यागे निमित्तम् किम् विप्रस्तुष्येन तेन चेत्। यद्यधास्यति लोकेस्मिन् संपरेतम् धनादिकम् तस्य त्यागे निमित्तम् किम् विप्रस्तुष्येन तेन चेत्। यद्यधास्यति लोकेस्मिन् संपरेतम् धनादिकम् तस्य त्यागे निमित्तम् किम् विप्रस्तुष्येन तेन चेत्। यद्यधास्यति लोकेस्मिन् संपरेतम् धनादिकम् तम् किम् विप्रस्तुष्येन तेन चेत्। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरण अरविंद भक्तिविदान स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। यद्यत् जो कुछ भी हास्यति छोड़ेगा लोके संसार में अस्मिन् इस संपरेतम् पहले से मृत धनादिकम् उसका धन धान्य तस्य ऐसी संपत्ति के त्यागे त्याग में निमित्तम हेतु किम क्या है। विप्रह ब्राह्मण जो गुप्त रूप में भगवान विष्णु हैं, तुष्येत प्रसन्न किया जाना चाहिए, न नहीं है। तेना ऐसे धन से चेत काश। अनुवाद, हे प्रभु आप यह भी देख सकते हैं कि इस संसार का सारा भौतिक ऐश्वर्य स्वामी के मृत्यु के समय विलग हो जाता है। अतएव यदि ब्राह्मण वामन देव दिए गए दान से तुष्ट नहीं होते तो क्यों ना उन्हें उस धन से तुष्ट कर लिया जाए जो मृत्यु के समय चला जाएगा। तात्पर्य, विप्र शब्द का अर्थ ब्राह्मण होने के साथ साथ गोपनीय भी होता है। बलि महाराज ने बिना विचार विमर्श किए ही गुप्त रीति से वामन देव को दान देने का निश्चय किया था, किंतु चूंकि ऐसे निर्णय से असुरों तथा उनके गुरु शुक्राचार्य के दिल दुखे, इसीलिए उन्होंने अनिश्चित रूप से कहा। शुद्ध भक्त के रूप में बलि महाराज ने पहले ही भगवान विष्णु को समस्त भूमि देने का निर्णय कर लिया था। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, तो पांचवा श्लोक जिसमें तात्पर्य नहीं है वो इस प्रकार से, नाहम विवेवि निर्यात न धन्यात सुखवर सुखार्णवात न स्थान च्यवनान मृत्योर यथा विप्र प्रलंबनात। अनुवाद, मैं नरक दरिद्र तथा दुख रूपी समुद्र पदच्युत होने या साक्षात मृत्यु से उतना नहीं डरता जितना कि एक ब्राह्मण को ठगने से डरता हूँ। और आज का श्लोक, हे प्रभु आप यह भी देख सकते हैं कि संसार का सारा भौतिक ऐश्वर्य स्वामी की मृत्यु के समय विलग हो जाता है। अतएव यदि ब्राह्मण वामन देव दिए गए दान से तुष्ट नहीं होते तो क्यों न उन्हें उस धन से तुष्ट कर लिया जाए जो मृत्यु के समय चला जाएगा। हरे कृष्ण, तो ये बलि महाराज का प्रसंग चल रहा है, कई चैप्टर्स तक पीछे भी हो रहा था ये कथा और आगे भी अभी दो चैप्टर और चलेगा। और बलि महाराज वामन आत्मनिवेदन के आचार्य हैं, पूर्ण समर्पण के, और शुक्राचार्य ने जब उनको उपदेश दिया कि आप ये इस बटु ब्राह्मण को जो है आप दान मत दीजिए क्योंकि ये विष्णु हैं और छल करके जो है ये सब कुछ आपका हर लेगा, तो बलि महाराज सुन रहे थे सब प्रसंग को, शुक्राचार्य के बातचीत को, और उसके बाद अब वो कहना प्रारंभ कर रहे हैं। तो ये आज पांचवा छठा श्लोक लिया, दूसरे जी थे चौथे श्लोक के अंदर उन्होंने अलग अलग आर्ग्यूमेंट दिए। तो पहले में तो ऐसा लगता है कि शुक्राचार्य की भौतिक बात का वो समर्थन कर रहे हैं क्योंकि एकदम से कट करना भी सदाचार नहीं है अपने गुरु की बात का। तो पहले श्लोक में तो लगता है वो समर्थन कर रहे हैं, दूसरा जो श्लोक है इस अध्याय का जो पहला बलि महाराज ने बोला है, तीसरे में श्लोक के अंदर बलि महाराज कह रहे हैं कि मेरा कुल इतना महान है, मैं तो विरोचन का पुत्र हूँ और प्रहलाद महाराज का पौत्र हूँ, तो कैसे मैं एक जो है ब्राह्मण के प्रति एक ठग का आचरण कर सकता हूँ कि मैंने उसको सत्य बोला और एक वचन दिया लेकिन वचन को निभाऊंगा नहीं। तो अपने कुल को याद करें, कितने महान कुल के अंदर मैं हूँ। तो ऐसा करके शुक्राचार्य को पहली आर्ग्यूमेंट देते हैं वो कि मैं तो वचन दे चुका हूँ लेकिन और इतने महान कुल से हूँ तो मेरे कुल का जो है का अपमान होगा या अपकीर्ति होगी, अपयश फैलेगा, तो इसीलिए मुझे दान देना चाहिए। फिर चौथे श्लोक के अंदर जो परसों किसी भक्ति माधवगुण महाराज ने लिया था, तो उसमें वो बोल रहे हैं कि असत्य से बढ़कर पाप में कुछ भी नहीं है। नहीं अस्यात् असत्यात् परो धर्मो इति होवाच भूरियम। तो अरे इसलिए माता पृथ्वी ने भी एक बार कहा था कि मैं किसी भारी बोझ को सहन कर सकती हूँ झूठे व्यक्ति का नहीं। प्रभुपाद तात्पर्य लिख रहे हैं कि इतने सारे पहाड़ हैं, पेड़ हैं, पत्थर हैं, धरती सबका बोझा उठा लेती है लेकिन झूठे व्यक्तियों का बोझा धरती को उठाना बड़ा मुश्किल लगता है। हालांकि कलयुग में तो असत्य भाषण एक सामान्य बात है, इट जस्ट मतलब चलते चलते व्यक्ति झूठ बोलता है बिल्कुल, उन्हें प्रत्येक समय पता भी नहीं लगता। ऑल्दो हम कहते हैं कलयुग के अंदर सत्य ही एकमात्र धर्म का पैर है जो जीवित है, लेकिन असत्य भाषण भी एक सामान्य बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि पृथ्वी माता भी देखो बोझा नहीं सहन कर पाएगी यदि मैं झूठ बोलूंगा, अर्थात मैं पृथ्वी के लिए भी एक बोझ बन जाऊंगा। और आज के श्लोक के अंदर जो है पांचवें श्लोक में कह रहे हैं कि मुझे किस चीज का डर है, तो क्या कह रहे हैं, ना हम विभेमी निर्यात। तो पहला बोल रहे हैं कि मुझे डर नहीं है, किन किन चीजों का डर नहीं है, पहला नरक जाने का डर नहीं है, निर्यात अर्थात नरक जाने का। दूसरा क्या है, अधन्यात कि गरीब हो जाओ, मान लो कि सारा धन संपत्ति छिन जाए तो उससे भी मुझे डर नहीं है। अभी हमें से ऑफकोर्स आजकल तो लोग नरक से ज्यादा नहीं डरते। एक बार एक व्यक्ति को बोला कि देखो तुम शराब पियोगे तो नरक में जाओगे, तो बोला अच्छा मेरे पिताजी भी पीते हैं, तो बोले वो भी नरक में जाएंगे, तो बोले मेरा दोस्त वो भी शराब पीता है, तो बोले वो भी जाएगा, बोले मेरा बॉस वो भी शराब पीता है, तो बोले वो भी नरक में जाएगा, बोले मेरा पड़ोसी भी शराब पीता है, तो बोले वो भी नरक में जाएगा, तो बोले सारे नरक में जाएंगे तो चिंता किस बात की है। तो सारे के सारे हम लोग यहाँ पी रहे, नरक जाके भी इकट्ठे रहेंगे, फिर दिक्कत है सारे नरक जाएंगे। तो आप लोगों को बोलिए यदि कि आपको तो उनको नरक का वैसे भय नहीं है, लेकिन सामान्य एक समझदार व्यक्ति को बोला जाए कि आप पाप कर्म करेंगे तो नरक में जाएंगे, आपको सजा भोगनी पड़ेगी, तो व्यक्ति डरता है उससे नारकीय अवस्था से। दूसरा कह रहे हैं कि मैं अधन्याद अर्थात धन रहित हो जाऊं, गरीब हो जाऊं। तो ये तो कोई सोच भी नहीं सकता, अगर किसी का नौकरी छूट जाए, मान लीजिए कोई धन बिजनेस में लॉस हो जाए तो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुइसाइड कर लेते हैं कई बारी। जैसे जब ये हमने पढ़ा था एक किताब के अंदर कि एक बार 1929 या उस समय एक या 1933 के आसपास जो है अमेरिका के अंदर पूरा स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया था, और पीछे भी कुछ समय भारत के अंदर भी ऐसा ही हुआ था। तो लोग जो हैं छतों अपने ऑफिस की खिड़कियों से कूद करके छलांग मार दिया था उन्होंने और सुइसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया था, क्योंकि वो सहन ही नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा कैसे जो है, अब हम रहेंगे कैसे बेसिकली, यू नो कि धन नहीं होगा तो कैसे जी पाएंगे, कैसे बिना ऐशो आराम के जी पाएंगे। तो लोगों को बहुत भय होता है कि धन ना चले जाए, यू नो ऐसा आम बात होता था, रघुकुल रीति सदा से आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए, ऐसा हम सुनते हैं रामचरितमानस में कि रघुकुल कैसी रीत होती थी। लेकिन आजकल क्या है, प्राण जाए पर धन ना जाए। अगर आजकल लोगों का स्लोगन बोलेंगे तो धन के बिना लोग ऐसा सोच नहीं सकते, लेकिन बल्कि आज कह रहे हैं मुझे वो भी डर नहीं है अगर सारा धन भी चला जाए, गरीब हो जाऊं मैं। फिर कह रहे हैं असुख अर्णवात, असुख अर्थात दुख, अर्ण मतलब उसका समुद्र, तो यदि दुखों का समुद्र भी मेरे ऊपर आ जाए, मान लीजिए ऐसे तो कोई दुख नहीं चाहता, लोग प्रार्थना करते हैं सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, कोई थोड़ी ना प्रार्थना करता है कि भगवान 25 साल हो गया 30 साल हो गया रहते बीमारी नहीं आया, बीमारी आ जाए ना, कोई ये बोलता है कि मैं 25 साल से ऑफिस जा रहा हूँ कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ एक्सीडेंट हो जाए, ऐसा तो कोई प्रार्थना नहीं करता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि दुखों का समुद्र भी मेरे ऊपर आ जाए तो भी मुझे डर नहीं है उससे। अच्छा और क्या डर नहीं है, न स्थान च्यवनान कि अदा मैं पदच्युत हो जाऊं, मान लीजिए मेरा पोस्ट छीन लिया जाए, जो मेरे पास पदवी है उसको छीन लिया जाए, अधिकार छीन लिया जाए तो मुझे डर नहीं लगता। जैसे शास्त्र में उदाहरण धृतराष्ट्र है, उसको हमेशा वो पदवी राजा बनने का बड़ा शौक था, कुर्सी का आसक्ति था। प्रभुपाद जी फिर तात्पर्य लिख रहे हैं कि धृतराष्ट्र जो है की ही मानसिकता को आधुनिक जो नेता लोग हैं उसको फॉलो कर रहे हैं, उनके धृतराष्ट्र की मानसिकता है, प्राण जाए पर कुर्सी ना जाए, है ना, उनका ही रहेगा। लेकिन बलि महाराज कह रहे हैं हालांकि मैं ब्रह्मांड का शासक हूँ फिर भी ये पद भी मेरे से कोई छीन ले मुझे उसका भी डर नहीं है। अच्छा, तो फिर किसी का डर है आपको? वो आगे बोल रहे हैं मृत्यु का, न मृत्यु और यथा, मृत्यु का डर भी नहीं है मुझे। मृत्यु से तो कौन नहीं डरता, हर आदमी जो है मृत्यु से तो तुरंत जो है उसको, हर व्यक्ति को भय होता है कि मृत्यु ना आ जाए कहीं ऐसा कुछ कार्य हो तो। लेकिन कह रहे मुझे मृत्यु का भी डर नहीं है, तो डर क्या है मुझे? विप्र प्रलंबनात्, कि एक ब्राह्मण को ठगने का मुझे बहुत डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि ब्राह्मण के प्रति मैं अपराध कर दूं, अर्थात ये जो वामन देव आए हैं इनके प्रति मैं कोई अपराध ना कर सकूं कि मैंने जो है एक साधु को वचन दिया है, एक ब्राह्मण को वचन दिया है और इसको झूठ ना बोलूं। तो ये एक आर्गुमेंट दे रहे हैं कि मुझे इस चीज का डर है बेसिकली। क्यों? क्योंकि देखो नरक में जाएंगे कुछ समय बाद, चलो ठीक है नरक में सदा भुगत हुए व्यक्ति वापिस आ जाएगा, धन भी आज है कल चले जाएगा परसों फिर आ जाएगा, कोई ऐसा डर नहीं है। दुख भी सुख मात्रा स्पर्शास्तु कौनते या शीतोष्ण सुख दुख था आगम अपाय नित्य, आता है जाता है कोई बात नहीं, दुख भी आएगा, मृत्यु है अगला पुनर्जन्म हो जाएगा, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, पद आज है कल चले जाएगा। हाँ, लेकिन यदि एक ब्राह्मण का अपमान हो, क्यों? भगवान को ब्राह्मण बहुत प्रिय है, नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। और तो ये ब्राह्मणों के प्रति यदि कोई अपराध हो तो वो मेरे को उसके उससे बहुत डर है। तो दुनिया में लोगों को बहुत प्रकार के भय होते हैं, कुछ भय तो इन्होंने लिखे और भी अनेक अनेक प्रकार के भय लोगों को रहते हैं, लेकिन वास्तविकता में भय होना चाहिए कि भगवान के जो प्रिय जन हैं ब्राह्मण या वैष्णव उनके प्रति कोई अपराध ना हो। ऐसे ही ये रहुगण महाराज जड़ भरत को ही बोलते हैं, ना हम विशंके सुर राज वज्रात न त्रक्षूलात न यमस्य दंडात न अग्नि अर्क सोम अनिल वित्त पास्रा छंके भृशं ब्रह्म कुलावमानात। जय श्री राधिकरण भगवान की जय, जगन्नाथ बलसुदरा मान श्री कृष्ण बलराम की जय। तो कह रहे हैं कि मुझे न तो इंद्र के वज्र का भय है, न नागदंश का भय है, न भगवान शिव के त्रिशूल का भय है। क्या कह रहे हैं? मुझे न तो मृत्यु के अधीक्ष यमराज के दंड की परवाह है, न मैं अग्नि तप्त सूर्य चंद्रमा वायु अथवा कुबेर के अस्त्रों से भयभीत हूं, परंतु मैं ब्राह्मण के अपमान से डरता हूं, मुझे इससे बहुत भय लगता है। तो इतने भयानक भयानक चीज बोल दिए, शिव जी का त्रिशूल, इंद्र का वज्र और नाग का दंश, ये सबसे डर नहीं लग रहा लेकिन ब्राह्मण के अपमान से डर लगता है। और श्रील प्रभुपाद तात्पर्य के अंदर बता रहे हैं कि वैष्णव अपराध, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यू नो यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता उपाड़े बा चिंतिता सुखी जाए पाता, कि वैष्णव अपराध जो है एक पागल हाथी के समान है और वह पूरे भक्ति लता बीज को जो उखाड़ करके फेंक देता है, उस एक भक्त की आध्यात्मिक संपत्ति नष्ट हो जाती है। तो यही इसी प्रकार का भय जो है बलि महाराज को भी है। तो भक्तों के अपमान से, साधुओं के अपमान से व्यक्ति को डर रहना चाहिए। अभी हम कुछ समय पहले, 3-4 दिन पहले ईस्टर क्लास टेम्पल गए थे, तो वहाँ एक भक्त ने एक ऐसी चुटकुला सुनाया उत्तर देते समय, तो रेलिवेंट था। वो बोल रहे कि एक बारी सच्ची घटना, ऐसे चुटकुला नहीं लेकिन हुआ सच में। तो एक बारी एक साधु जो है गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे थे, तो वो तपस्वी साधु थे, बड़े दुबले पतले ज़्यादा, गोवर्धन की जो है परिक्रमा कर रहे थे। और जब परिक्रमा कर रहे थे तो एक युवक और एक युवती जो है वो बिल्कुल साथ साथ चल रहे थे, जो है बड़े आपस में क्लोज उसके अंदर। और जो युवक था वो बहुत ही बॉडी बिल्डर और शक्ति उसके अंदर था, पूरा स्किन टाइट टी शर्ट पहन के, बाइसेप्स ट्राइसेप्स, और लड़की को ऐसे गले में हाथ डाल के सब चल रहे थे। तो जब चल रहे थे तो दोनों, तो वो साधु महाराज जब परिक्रमा करते करते चल रहे थे तो वो लड़की का जो हाथ है साधु महाराज का टच हो गया। तो लड़की बोली कि अरे इसने साधु ने मेरे को छेड़ा, जो ऐसे शोर मचाने लगी। तो उस व्यक्ति को तो अपने बाहुबल का वो था, तो साधु की पिटाई कर दी उसने जो है, तो पिटाई कर दी। तो साधु महाराज तो वैसे भी साधु थे, संत थे, सहिष्णु थे, तो ज़्यादा कुछ किया नहीं, लेकिन 200 कदम भी वो आगे गए होंगे, 200 मीटर आगे गए होंगे कुछ, तो क्या हुआ, एक पीछे से एक वाहन आया, ट्रक आया ऐसे, और उसने उसी हाथ, जिस हाथ से उसने पिटाई की थी उसी हाथ को बहुत जोर से हिट किया जो है, तो उसको बहुत चोट लग गया, ऐसे फ्रैक्चर वगैरह हो गया उसी हाथ के अंदर। तो वो बोलने लगा ये कैसे हुआ ऐसे, तो समझ नहीं आया कि ऐसे कैसे हुआ। तो वहीं पर एक जो है व्यक्ति और था, उसने दोनों प्रसंग देखा था, कैसे इसी हाथ से साधु की पिटाई की, कैसे इसी किसी हाथ पे अभी जो है तो उसने बोला देखो, लड़की के यार ने साधु की पिटाई की, लड़की के यार ने साधु को मारा और साधु के यार ने लड़की के यार को मारा कि जो व्यक्ति है, लड़की के यार ने साधु को मारा और साधु का यार कौन है? भगवान। तो देखो भगवान जो है वो भी ब्राह्मणों और वैष्णवों के प्रति अपराध को सहन नहीं कर सकते। कुल मिला के प्रसंग ये था, तो जो है थोड़ा ह्यूमरस है उन्होंने जो है ऐसा बताया। तो इससे बहुत डरना चाहिए भक्त को कि ब्राह्मणों के प्रति या साधुओं के प्रति अपराध से। और अगर समय बचेगा तो मैं इस प्रसंग में दोबारा आऊंगा, लेकिन जो आज के श्लोक के अंदर जो बहुत विशेष संदेश दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बलि महाराज एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं कि किस प्रकार से भौतिक ऐश्वर्य टेम्पररी है या नश्वर है या शाश्वत नहीं है। तो बोल रहे हैं कि यद्यध्यासति लोकेस्मिन् अपरेतम धनादिकम कि संपरेतम धनादिकम। ये जो धन धान्य है, जितना व्यक्ति के पास ऐश्वर्य है, रिश्तेदारी है या कुछ भी उसका संपत्ति है, ये सब क्या है? ये मृत्यु के समय स्वामी से विलग हो जाता है। बड़े बड़े लोग आए दुनिया के अंदर और बोला कि ये पृथ्वी हमारी है, राज्य हमारा है, साम्राज्य हमारा है, पृथ्वी वहीं रहती है, लेकिन वो सब राधा चले जाते हैं। कितने ही घरों के अंदर जो है बाहर नेम प्लेट लगा रहता है, फलाना डैश एंड डैश सो सो एन सो सो एन सो, फिर 25 साल बाद नेम प्लेट, घर भी वहीं रहता है लेकिन नेम प्लेट में नाम चेंज हो जाता है, और 25 साल बाद फिर नाम चेंज हो जाता है कि नहीं? घर वहीं रहता है, पृथ्वी वहीं रहती है, लेकिन जो लोग उसको कह रहे थे कि हम इसके मालिक हैं, इसके या हमारी ये संपत्ति है, वो सब चले जाते हैं, संपत्ति वहीं रह जाती है। तो वो ये संदेश दे रहे हैं, शुक्राचार्य को कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप यह भी देख सकते हैं कि संसार का सारा भौतिक ऐश्वर्य स्वामी की मृत्यु के समय विलग हो जाता है। तो जब वैसे ही इसको ये नश्वर है, वैसे ही जब चले जाना है, तो समय से क्यों ना एक योग्य पात्र को दे दिया जाए कि सत्कार में लगा दिया जाए, इस ब्राह्मण को देख के उसको संतुष्ट कर दिया जाए तो वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये तो वैसे ही चले जाएगा एक ना एक दिन, तो कल जाता था ना आज चले जाए। तो ऐसा वो संदेश दे रहे हैं। हालांकि मन में वो निश्चय कर चुके हैं कि ठीक है, ये ब्राह्मण यदि विष्णु भी है तो जैसे कि दो श्लोक पहले आया था कि वो कृपा सिद्ध हैं बलि महाराज और प्रहलाद महाराज की कृपा से, उनको मालूम था ये भगवान है और भगवान की भक्ति उनके जागृत हो गई थी, तो वो भगवान को देना चाहते थे कि ठीक है भगवान आए तो लेके जाएं। लेकिन यहाँ पे वर्ड का यूज कर रहे हैं विप्र तुष्येत न ते न छेत। प्रभुपाद यही शब्द को तात्पर्य बता रहे हैं कि विप्र का अर्थात ब्राह्मण। तो एक शब्द तो ये है कि भाई इस ब्राह्मण को जो है दान दे देना चाहिए। अब वो ये नहीं बोला विष्णु तुच्छेत न तेन चेत, जानते हैं कि विष्णु हैं तो वो क्यों नहीं बोला? क्योंकि फिर अगर वो बोलते विष्णु को देना है तो जितने उनके असुर संगी हैं और महाराज शुक्राचार्य दोनों को बड़ा दुख होता कि भाई जिसको हमने राजा बनाया उसी ने पार्टी चेंज कर लिया है कि नहीं, कि विष्णु की पार्टी में चले गए ये, तो उनको बड़ा दुख लगता। उनको दुख भी नहीं देना चाहते थे लेकिन अपने डिटर्मिनेशन में, अपने संकल्प में वो दृढ़ थे बिल्कुल। तो उन्होंने जो है ये वर्ड यूज किया विप्रस्तुष्य न ते न चेत। विप्र का दूसरा अर्थ प्रभा जी बता रहे हैं कि गोपनीय, और शब्दार्थ में क्या लिखा है? ब्राह्मण जो गुप्त रूप में भगवान विष्णु है। तो दोनों वर्ड जो उन्होंने ही मेंट बोथ बेसिकली। तो शुक्राचार्य कह रहे हैं उनका दिल को ठेस ना लगे तो वर्ड यूज कर दिया विप्र, और गोपनीय अर्थात वैसे ही विष्णु है और हृदय में वो गोपनीय रूप से दान दे चुके थे उन्हें कि ये तो मैं निर्णय कर चुका हूं, अब तो सिर्फ जो है कुछ आर्ग्यूमेंट प्रस्तुत करने हैं कि गुरुजी नाराज भी ना हो तो ऐसा कुछ काम हो जाए तो अच्छा है चलो, लेकिन वो संकल्प कर चुके थे कि हमने देना है। तो उनको संदेश दे रहे हैं कि सारा संसार क्या है, ये संसार नश्वर है, तो क्यों ना समय से ही इसको अन्य किसी सत्कार्य में लगा देना चाहिए। ये संदेश हमको जगह जगह श्रीमद् भागवतम में और अन्य सभी ग्रंथों में प्राप्त होता है। और अगले श्लोक में जो कल श्लोक आएगा, जुनेज भक्ति रत्नाकर अम्बरीश महाराज कल आएंगे तो वो चर्चा करेंगे, वो श्लोक के अंदर बलि महाराज ये बोलेंगे कि देखो ऐसा नहीं कि ये मेरा मत है कि चलो ठीक है सब नश्वर है तो बांट दो इसे, समय से पहले सत्कार में लगा दो। यदि ऐसा कोई करता है तो उसको महान और चिरकाल तक कीर्ति की प्राप्ति होती है, लंबे समय तक उसका यश फैला रहता है। लोग याद करते हैं कि ऐसे महान व्यक्तित्व जो थे इस संसार के अंदर, उनका यश होता है। और यदि नहीं कोई ऐसा करता तो उसकी अपकीर्ति फैलती है कि देखो कितना जो है कंजूस व्यक्ति था और कितना जो है छोटे हृदय का व्यक्ति था या धर्म अधार्मिक व्यक्ति था। तो वो कह रहे हैं, तो उदाहरण किसका देंगे, एक दधीची मुनि का, जिन्होंने देवताओं के हित के लिए क्या दान दिया, अपनी हड्डियां अर्थात अपना प्राण ही त्याग दिया। बेसिकली हड्डी देने का अर्थ क्या है, मतलब उनको मरना पड़ेगा तभी तो हड्डी देंगे ना, तो प्रैक्टिकली अपना जीवन उनको दे दिया। दूसरा उदाहरण देंगे शिबी महाराज का, कि किस प्रकार से अग्नि और एक और देवता जो है कबूतर और ये ईगल क्या बोलेंगे बाज, इनका रूप धारण करके आए थे और वो कबूतर की गोद में आ गए। सब कथा तो जानते रहेंगे, ऐसा प्रभुपाद जी भी एक तात्पर्य में पूरा कथा का वर्णन कर रहे हैं कि जब महाराज परीक्षित शिबी महाराज के समान दान देने में होंगे तो वहां पे शिबी महाराज का वर्णन श्रील प्रभुपाद जी भी लिख रहे हैं। तो जो है ऐसे अनेक महापुरुष जो है जन साधारण के लाभ हेतु अपने प्राणों तक की आहुति देने के इच्छुक थे, बोल रहे हैं कि प्राण भी उन्होंने त्याग दिए बेसिकली। और प्रभुपाद जी तात्पर्य लिख रहे हैं शिबी महाराज ने, मुझे ये कथा अगली कथा नहीं पता शिबी महाराज के बारे में, कि उन्होंने अपने पुत्र की भी आहुति दे दी थी जन साधारण के लिए। तो ऐसा वहां पे श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है, तो इतिहास इसका साक्षी है। वह कह रहे हैं इतिहास में देखो इतने महान महान लोग भी हुए हैं, तो क्यों ना जो है ये दान दे दिया जाए। इसके लिए क्या गंभीर सोच विचार करना जब इतने महान योद्धा भी हुए। तो शुक्राचार्य के डाउट होगा कि चलो कोई किसी ने पहला ऐसा किया या तुम ही पहले व्यक्ति हो गए ऐसा, तो बोल रहे नहीं नहीं इतिहास में भी महान महान लोगों ने जो है महान व्यक्तियों ने महान महापुरुषों ने ऐसा कार्य किया है। तो इसमें तो मैं भी प्रह्लाद का पौत्र हूँ, विरोचन का पुत्र हूँ, तो कम महान तो मैं भी नहीं होना चाहिए, है कि नहीं, तो कोई अच्छा कार्य करना चाहिए। तो ये वो वहां पे बता रहे हैं। तो इसीलिए जो संदेश है कि संसार के अंदर एक व्यक्ति को अपनी संपत्ति से ज्यादा आसक्त नहीं होना चाहिए, और यदि सत्कार्य का मौका लगे तो उसको निश्चित रूप से उसे इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जिस भी वस्तु के प्रति हम आसक्त हैं, कितनी भी आसक्ति क्यों ना हो, वस्तु ही हमको छोड़ जाएगी, या फिर हम छोड़ जाएंगे वस्तु वहीं रहेगी, हम छोड़ जाएंगे। ऐसे एक भक्त ने बताया था हमको कि जब 2001 या 2000 के अंदर 26 जनवरी के दिन जो है भुज गुजरात के अंदर भूकंप आया था, तो एक व्यक्ति ने जो है अपने पूरे जीवन की जमा पूंजी को लगा करके एक बड़ा फाइव स्टार होटल बनाया था। उसका सपना था कि एक बड़ा फाइव स्टार होटल बनाएंगे और 26 जनवरी के दिन जो है इसका उद्घाटन करेंगे, जिस समय राष्ट्रगान बोला जाता है, तो वही समय पे यू नो देश की सेवा के लिए, लेकिन वही समय पे लगभग ऑलमोस्ट ही समय पे रिबन रिबन सब बंधा था और काटने के लिए तैयार थे सेरेमनी के लिए, और क्या हो गया, भूकंप आ गया, और पूरे जीवन की जमा पूंजी से बनाया वो होटल क्या हुआ, उनके सामने ताश के पत्तों की तरह टूट गया, बिल्कुल जो है बिल्कुल ध्वस्त जो है मलबा बन गया खाली, और कुछ नहीं। तो व्यक्ति वही है, लेकिन क्या है, जो संपत्ति को सोच रहा था कि वो भोगेगा वो समाप्त तो हो गई, है कि नहीं। और कई बार संपत्ति रहती है, मान लो होटल भी रह जाता तो क्या होता, वो महानुभाव तो नहीं रहते, थोड़े समय बाद मृत्यु हो जाती उनकी। ऐसे एक बार हमारे भक्त बता रहे थे कि एक व्यक्ति के पास, बड़े व्यक्ति के पास उनके 5 फाइव स्टार होटल हैं शायद दिल्ली में या मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर, तो उनके पास कुछ डोनेशन लेने गए थे, वो ऐसे उनकी रुचि होती थी तो गए, तो ऐसे जब भक्त ने प्रचार करना शुरू किया उनको, तो वो उस व्यक्ति ने बताना शुरू किया, कह रहे अब जानते हो मैंने अपने करियर की शुरुआत कहाँ से की थी, बोले मैं एक ढाबे में काम करता था, छोटे सड़क पे जो ढाबा होता है उसमें काम करता था, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं एक फाइव स्टार होटल बनाऊंगा, तो मैंने बड़ा मेहनत किया ढाबे से फिर एक छोटा हॉस्टल फिर रेस्टोरेंट करते करते आज मेरे पास 5 फाइव स्टार होटल है। अच्छा बड़ा है वक्त बड़ा लगा, अच्छा चलो बहुत अच्छी बात है, भगवान ने बड़ी सफलता दी है। लेकिन वो बोला कि जब मैं ढाबे में था तो मेरी बड़ी रुचि होती थी कि अच्छे अच्छे पकवान खाऊंगा, ढाबे में तो इतने पकवान मिलते नहीं थे, तो बोला जब मेरा होटल होगा तो मैं अच्छे पकवान खाऊंगा। 5 फाइव स्टार होटल जितना मर्जी खाओ, लेकिन क्या बोला, कह रहे कि अब मेरे को इतनी बीमारियां हैं कि डॉक्टर ने सब मेरे को बैन किया हुआ है। तो व्यक्ति सोचता है कि मैं भोगूंगा, लेकिन जो है दुनिया में भोग नहीं सकता बेसिकली। तो इसीलिए यदि किसी को अवसर प्राप्त हो सत्कार्य में लगाने का, तो उसमें ज्यादा विचार विमर्श नहीं करना चाहिए, चाहे वो प्राण हो, अर्थ हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे वाणी हो, यदि किसी सत्कार्य में लग सकता है तो उसे करना चाहिए, इसमें कंजूसी नहीं दिखाना चाहिए। और दधीची मुनि के पास जब देवतागण सब गए थे तो बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं जो दधीचि मुनि हैं। वो क्या कह रहे हैं कि जो है वो देवताओं को बोलते हैं, यो ध्रुवेण आत्मना नाथा न धर्मम न यशः पुमान इहेत भूत दया स शोच्यस्तावरैरपि। वो बोल रहे हैं, हे देवताओं, जो न तो दुखी प्राणियों पर दया दिखाता है और न धार्मिक नियमों या अशुण कीर्ति के महान कार्यों के लिए अपने नश्वर शरीर की बलि कर सकता है, वह निश्चय ही जड़ प्राणी तक के द्वारा धिक्कारा जाता है। वो क्या कह रहे हैं, यो अध्रुवेण आत्मना नाथा, कि हे देवताओं, हे नाथ, ये जो शरीर है अध्रुवेण आत्मना, ये शरीर क्या है, अध्रुव यानी कि शाश्वत नहीं है, तो नष्ट होना है। तो यदि ऐसा अनश्वर शरीर प्राप्त होने पर यदि कोई जीव ना तो धर्म के कार्य करता है और ना दूसरे प्राणियों पर दया दिखाता है, तो उसको कौन धिक्कारता है? उसको तो मनुष्य छोड़िए, देवी देवता छोड़िए, उसे पशु पक्षी भी छोड़िए, पेड़ तक धिक्कारते हैं। स्तस्थ शोच्य स्थावे रही रपी, क्यों धिक्कारते हैं? बोले, हाय ये मनुष्य, हम तो पेड़ होते इतने महान हैं कि जीते हैं तो छाया देते हैं, फल देते हैं, कोई पत्थर मारता है तो फल देते हैं, फूल देते हैं, बिना किसी भेदभाव के सबको छाया देते हैं। गर्मी में उसको शीतल छाया प्रदान करते हैं, तो बारिश आती है तो उसे जो है बारिश से बचाते हैं, सूख जाते हैं तो लकड़ी ईंधन देते हैं, तो मरने के बाद भी हम काम आते हैं, हम तो स्थावर जो है जंतु हैं। और धिक्कार ऐसे मनुष्य पे, सशोच्य धिक्कार है। वो बोलते हैं कि मनुष्य होते हुए तुम्हें सब बुद्धि दिया, प्राण दिया, अर्थ दिया, वाणी दिया, और तुम दूसरों के दया के लिए नहीं लगा सकते उसको, तो तुमसे अच्छे तो हम ही हैं। अर्थात जो पेड़ खड़े हुए और देखते हैं ऐसे मनुष्यों को कि जो धर्म के लिए या दूसरों की दया के, दूसरों के ऊपर दया दिखाने हेतु जो भगवान उनको दिया उसको नहीं लगाते, तो ऐसे वक्त मनुष्यों पर, ऐसे जंतुओं पर तो पेड़ भी धिक्कार करते हैं। हम देखें, इवन जानवर भी हो, गाय घास खाती है, दूध देती है, तो वो भी कुछ ना कुछ परोपकार करते हैं, लेकिन ऐसा मनुष्य जो परोपकार नहीं करता उस पर तो पेड़ भी धिक्कार करते हैं, है ना, कि धिक्कार है आपके ऊपर। तो ऐसा वो बोल रहे हैं दधीचि मुनि। और फिर क्या कहते हैं, कहते हैं एक दूसरा दृष्टिकोण से बताते हैं फिर उन्हें, अहो दैन्यम अहो कष्टम पारक्य क्षण भंगुरे यन्नोपकुर्याद अस्वार्थे मर्तः स्वज्ञाति विग्रह है। फिर वो बोल रहे हैं कि देखो, ये शरीर जो है, क्या है शरीर, अहो दैन्यम अहो कष्टम, ये शरीर जो है बड़ी दीन स्थिति है, दीन स्थिति में रहता है कुछ भी, और अहो नष्टम, कुछ भी क्षण नष्ट हो सकता है, कुछ ही समय काम आएगा, ज्यादा समय काम नहीं आता, थोड़े समय शरीर स्वस्थ है तब किसी काम आ सकता है, और फिर भी वो समय भी नष्ट हो जाएगा कुछ समय बाद। तो इसीलिए, और मरने के बाद क्या होता है शरीर का, पारक यही क्षण भंगुर, कि ये पराया धन है। क्यों, क्या होगा कि मरने के बाद इसको गीदड़ कुत्ते जो है सब खा जाएंगे, तो इसीलिए जब तक ये शरीर है और इस शरीर से सब कुछ संबंधी वस्तु है, उसे क्या करना चाहिए, हमेशा अन्यों की सेवा में लगाना चाहिए, परोपकार में लगाना चाहिए, अन्यथा वे दुख के कारण बनेंगे। जो ऐसे जो शरीर है, धन है, कुटुंब जन, कुटुंबी लोग हैं, परिवार जन हैं, इसे दुख के कारण बनेंगे, तो जब तक हैं दूसरों की सेवा में लगाना चाहिए। और इसमें राधा गोविंद महाराज बड़ा अच्छा तात्पर्य दे रहे थे ये पारक के वर्ड का, कि बड़ा बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, कि ये शरीर है किसका। तो आर्ग्यूमेंट होता है बहुत बारी कि ये शरीर, माता बोलेगी कि मैंने इसको अपने गर्भ में रखा था 9 मास के लिए, तो इस शरीर पे मेरा अधिकार है। तो पिताजी बोलेंगे कि नहीं, 20 तो मैंने प्रदान किया था, मेरा अधिकार है। और जो है, जो मालिक दिहाड़ी देता है, नौकरी पैसा देता है, तो बोलेगा नहीं, मैंने पैसा दिया, इसके शरीर पे मेरा अधिकार है। तो शादी हो जाएगा तो पत्नी बोलेगी मेरा अधिकार है इसके शरीर के ऊपर, बच्चे हो जाएंगे तो बोले पिताजी पे हमारा अधिकार है। तो किसका है ये शरीर, लेकिन हर व्यक्ति सोचता है मेरा शरीर है, हालांकि तो वो इतना सब लोग उस पर जो है अधिकार अपना जमा रहे हैं, प्रभुत्व जमा रहे हैं। तो ये बड़ा क्वेश्चन है। और फिर महाराज कह रहे हैं कि चलो मान लीजिए कोई व्यक्ति, कोई वस्तु है, उस पर अलग अलग लोग बोल रहे कि मेरा है, मेरा है, ये मेरा है, लेकिन वास्तविकता में जिसके पास फाइनल वो जाए अंत में उसका है। मान लीजिए पेन हमने इनको दिया, इन्होंने इसको दिया, अंत में गया वहां बैठे प्रेमानंदन प्रभु के पास, तो किसका पेन हो गया? प्रेमानंदन प्रभु का, है कि नहीं? तो बोले अंत में ये शरीर का होता क्या है मरने के बाद में? या तो वो धरती में जला दिया जाता है, अग्नि का दे दिया जाता है, या धरती में गाड़ दिया जाता है, या फिर गिदड़ कुत्ते खा जाते हैं उसे, जो है। तो अंत में शरीर किसका हुआ? या तो अग्नि का हुआ, या गिदड़ कुत्तों का हुआ, या फिर जो है कीट पतंगों का, धरती का हुआ। तो ये शरीर तो अपना है ही नहीं कभी वैसे ही, तो क्यों ना इसे परोपकार में लगाया जाए। तो ये संदेह दधीचि मुनि देते हैं और फिर कहते हैं कि हे देवताओं, इसीलिए जो है मैं अपने शरीर को, इस स्थूल शरीर को भगवान को याद करके त्याग करता हूँ। तो ऐसे जो है बलिदान को, ऐसे परोपकारी दधीचि मुनि और शिवी महाराज को बलि महाराज याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो है ये शरीर और ये जो ऐश्वर्य है बहुत नश्वर है, तो मेरे को मौका मिला है किसी ब्राह्मण को संतुष्ट करने का, तो क्यों ना इसे लगाया जाए, क्योंकि ऐसे ये धन मुझे छोड़ देगा कभी ना कभी। तो ये बलि महाराज शुक्राचार्य को यहाँ पे ये बोल रहे हैं और जो है, और वो डरे हुए हैं कि किसी प्रकार का अपमान ना हो। और ये जो श्लोक बलि महाराज ने अभी शुक्राचार्य को बोला है, ना हम विभेमि निदयात न धन्यात असुखारणवात न स्थाना चवनात मृत्युर यथा विप्र प्रलंबनात, दो अध्याय बाद 20वां अध्याय है, 22वें अध्याय के प्रारंभ में जब भगवान बलि महाराज को बंदी बना लेंगे, तो यही ऑलमोस्ट सिमिलर जो वर्स है वो बलि महाराज भगवान को ही बोलेंगे। विभेमि नाहम निरयात पद अच्युतो न पाश बंधात व्यसना दुरत्ययात नैवात कृच्छ्रात भवतो विनिग्रहात असाधु बाधात भृशमुद्विजे यथा, मैं अपनी सारी संपत्ति से वंचित होने, नारकीय जीवन बिताने, गरीबी के द्वारा, गरीबी के लिए या वरुण पाश द्वारा बांधे जाने या आपके दंड में उतना भयभीत नहीं हूं जितना कि मैं अपकीर्ति से डरता हूं। और फिर वो क्या कह रहे हैं कि देखो ब्राह्मण आया, भगवान भी आए, मैंने दिया नहीं, तीन वचन सिद्ध नहीं कर पाया, और फिर बोलेंगे कि नहीं आप मेरे शीश पे जो है अपना तीसरा कदम रखिए। और फिर बलि महाराज का जो आत्मसमर्पण है, उनके मन में जरा भगवान के प्रति रोष नहीं था कि हाय छीन लिया, मैं तो डर रहा था छल करने से, ठगने से, और ये स्वयं ब्राह्मण के वेश में आके मुझे ठग लिया इन्होंने। भगवान ने छल किया ना, पहले तो वामन के रूप में आए इतने छोटे बन के, बाद में दो कदम के अंदर सब ऊपर नीचे सब उन्होंने जो है। तो तभी भी बलि महाराज क्या कह रहे हैं भगवान को, वो कह रहे हैं कि वास्तविकता में देखा जाए तो दानवों के प्रति आपकी ज्यादा कृपा है देवताओं से भी। तो आप सोचिए, और प्रभुपाद जी श्लोक कौन का कोट करते हैं, वो जो ग्रेटिट्यूड ब्रह्मा जी तत्ते अनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम हृद्वाग अपूर्व विदधत नमस्ते जीवे तयो मुक्ति पदे सदाय भाक, कि वरुण पार से बांध लिया, उनसे ब्रह्मांड के शासक होते थे और अभी कैदी बना दिया कि आप तीसरा पैर रखने जमीन नहीं दे सकते, तो इतना अपमान हो गया, उनका दंड दे दिया। इसके बाद बलि महाराज का जो जो समर्पण है वो भगवान के प्रति महान प्रेम का है। क्या बोल रहे हैं कि देखिए, दानवों को आप बारंबार दंडित करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, उनका पद छीन लेते हैं उनसे, हालांकि हम दानव थोड़े मोटी बुद्धि के हैं तो समझ नहीं पाते कि हमें आपको समर्पण करना चाहिए, वो अलग बात है, लेकिन हमसे बार बार आप किसी ना किसी प्रकार से छीन करके, हमारा पद, हमारा स्थान, ऐश्वर्य छीन करके आप हम पे वास्तविकता में कृपा करते हैं, लेकिन ये देवता जो है इनको क्या करते हो आप, ये पद सारा छीन करके हमसे इनको दे देते हो आप, है कि नहीं? तो ये बलि महाराज कह रहे हैं वहां पे, दोनों विशेष बोले तो उनके ऊपर ज्यादा कृपा नहीं है, उनके ऊपर तो कपट कृपा है क्योंकि उनका भौतिक ऐश्वर्य दे रहे हैं आप, लेकिन हमसे छीन रहे, तो हमारे ऊपर आप ज्यादा कृपा कर रहे हैं, तो मैं धन्य हूं। ऐसा बलि महाराज बोलते हैं कि आप मेरे शीश पे अपना जो है चरण रखिए, क्योंकि सिमिलर श्लोक था इसलिए मैंने वो श्लोक भी कोट किया, बिल्कुल ना हम विभेमी से उसके अंदर ही प्रारंभ होता था। तो ऐसे बलि महाराज जो है यहाँ पे बता रहे हैं। और कोई सोच सकता है कि भाई ब्राह्मणों को वचन दिया तो इतना क्या डरना, कोई बात नहीं, आज के जमाने में तो होता ही है ना, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा बहुत झूठ तो चलता ही है, बोलते हैं तो ठीक है झूठ भी बोले, लेकिन किसी ब्राह्मण को, वैष्णव को झूठ नहीं बोलना चाहिए, विशेषकर जो ब्राह्मण योग्य ब्राह्मण हो। ऐसा नहीं दो पैसे का धागा डाल लिया और कोई ब्राह्मण कुल में पैदा हो गए लेकिन कार्य वैसा नहीं, कार्य तो शूद्र का या उससे भी घटिया कार्य है, लेकिन जो वास्तविकता में योग्य ब्राह्मण है, जो ब्रह्म जानातीति ब्राह्मण, और जो ब्राह्मण के कर्तव्यों का पालन करते हैं, जो ब्राह्मण के गुणों को अनुकूल करते हैं, तो ऐसे ब्राह्मणों से हमेशा व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। कम से कम हम इतिहास में देखते हैं भागवतम में अन्य ग्रंथों के अंदर कि महान व्यक्ति लोग भी राजा लोग भी जो है इस चीज़ से बहुत डरते थे। तो ऐसे एक कथा भी आती है श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद के अंदर महाराज नृग की। तो हम देखते हैं नृग महाराज जो है ऐसे सब बच्चे द्वारका में खेल रहे थे, वहाँ देखा एक बड़ा छिपकली है कुएं के अंदर। तो कृष्ण भगवान को बुला लिया उन्होंने कि ऐसे इतने बड़े कुएं में इतना बड़ा विशाल का एक छिपकली सा देखा तो आप देखिए। और फिर भगवान ने जो है भगवान कृष्ण ने जो है अपने उल्टे हाथ से जो छिपकली को पकड़ लिया और बाहर निकाला। बाहर निकालते ही वो छिपकली ने क्या किया, एक बड़ा सुंदर शरीर धारण कर लिया देवता के समान। तो अब भगवान तो सब जानते थे कि ये कौन है, लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं उस देवता से कि आप कौन हैं और आपको छिपकली का रूप क्यों धारण करना पड़ा। तो वो बोल रहे हैं कि आप तो भगवान है सब जानते हैं, फिर भी आपने पूछा है तो मैं उत्तर देता हूँ। वो बोल रहे हैं कि मैं पूर्व काल में जो हूँ मैं छिपकली था जो महाराज मृग था और अभी मेरे को छिपकली की योनि में जन्म मिला है। और वो भगवान को कहते हैं कि मैं इक्ष्वाकु राजा का पुत्र हूँ और जब आपने दानी पुरुषों का परिचय जानना चाहोगा इतिहास में बड़े बड़े दानी तो मेरा नाम भी उसके अंदर आया होगा, ऐसा उन्होंने बोला। देखो राजाओं को तो एक ही रहता था कि उनका यश हो, है कि नहीं, तो ये भी एक ईश्वर भाव उनका रहता था कि उनका यश फैले जो है। तो वो बोल रहे हैं कि भगवान आप साक्षी हैं, आपको तो त्रिकाल लग गया, भूत वर्तमान भविष्य सब मालूम है, लेकिन फिर ये बताता हूँ कि मैं जो हूँ इतना दान देता था और कह रहे कि इतनी गायें दान की थी जितना कि धरती पे धूलि के कण हैं या फिर आकाश में नक्षत्र हैं या वर्षा में पानी की बूंद है। और ऐसा नहीं मरी गिरी गाय जो दूध नहीं देती थी और मरने वाली है, तो ऐसे वाली गाय नहीं, बोले सब हृष्ट पुष्ट गाय थी और एक एक बछड़ा ही दिए थी, अर्थात अभी लंबा जीने वाली गाय थी और बहुत ही स्वस्थ दूध दे दुधारू गाय थी। और उनके सींग सोने से मतलब क्या बोलेंगे उसे, सोना चढ़ा हुआ था उनके, और उनके जो खुर पे चांदी मणि हुई थी और जो उनके बैक पर जो है पीठ पर सिल्क के रेशम के वस्त्र थे और उन वस्त्रों पे मोती और जो है स्वर्ण अलंकार जो है बहुमूल्य ऐसे स्वर्ण आहारों से उन कपड़ों पे लगे हुए थे, मंडे हुए थे। और बोल रहे ये गायें ऐसे अरे गेरे नथु खेरे को नहीं दी थी किसी, बिल्कुल योग्य ब्राह्मणों को दी थी, ऐसे ब्राह्मणों को लालची ब्राह्मणों को दी थी ना, बिल्कुल योग्य ब्राह्मण जो गरीबी में रहते थे और धर्म का पालन करते थे, संपन्न नहीं थे, इस प्रकार से उन सबको जो है मैंने दिया था। और जो गरीब थे योग्य ब्राह्मण के मानदंडों को पूरा करते थे, गरीब थे, भूमि स्वर्ण गृह घोड़े हाथी वो सब प्रदान किए, सब कुछ प्रदान किया था। और भी बहुत सारे सत्कार्य किए थे, कुआं खुदवाना, जलाशय करना, वृक्षारोपण करना इत्यादि इत्यादि। तो प्रभा जी बता रहे हैं कि ये भक्त नहीं थे, कर्मकांड राजा थे। तो ठीक है ऐसा महान दानी महाराज नृग थे, लेकिन एक बार क्या हो गया कि मैंने जो एक झुंड गायों का दान दिया उसमें से एक गाय किसी ना किसी प्रकार से लौट कर वापिस आ गई। और जब मिल गई वो गाय तो मुझे तो नहीं पता था कि वो गाय वापस आ गई है, यही गाय को मैंने किसी अन्य ब्राह्मण को दान दे दिया। तो जब दान दे दिया तो वो पुराना ब्राह्मण आया कि भाई ये गाय तो मुझे दान में मिली थी। बोला नहीं ये तो राजा ने मुझे दान में दी है। तो दोनों झगड़ा करने लगे। तो नृग महाराज के पास आया तो उनको भी थोड़ा आश्चर्य हो गया कि अरे ऐसा कैसे हुआ कि जो गाय पहले दान में दोबारा उसी वस्तु को देना तो बड़ा अपराध है, ये तो एक पाप है, एक प्रकार का गलत कार्य हो गया। तो दोनों को बोला कि ठीक है आप दोनों को मैं 100,000 गाय देता हूँ, ये गाय को छोड़ दो। लेकिन दोनों ब्राह्मण बोले नहीं ये तो तुमने धर्म का उल्लंघन किया है और जो है क्यों, क्योंकि हमारा इसमें अब लिखा है दोनों ही सोचते कि उनके वैधानिक पद का बलपूर्वक हनन हुआ है, मीन्स देयर राइट इज फोर्सफुली टेकन अवे, सो दिस वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू देम, उनको नहीं ये मान्य था। तो उन्होंने जो है राजा को जो है तो बड़े क्रोधित होकर दोनों ब्राह्मण असंतुष्ट होकर चले गए। अब जब राजा की मृत्यु आई तो फिर यमराज के पास लेके गया, यमराज ने बताया कि आप अपने पुण्य कर्मों को भोगना चाहते हैं ना पहले पाप कर्मों को। तो राजा ने बोला कि पहले जो है मैं पाप कर्मों का फल भोगना चाहता हूँ। यमराज ने बोला था इतने पुण्य कर्म भोगते रहोगे तो असीमित प्रैक्टिकली वो है, उसकी सीमा भी यमराज को नहीं पता इतना पाप पुण्य कार्य किया है। लेकिन राजा बोले कि फिर भी मैं पाप कर्म को भोगना चाहता हूं। तो ये इस एक पाप के कारण उन्हें क्या योनि मिली? छिपकली की। और फिर काफी लंबे समय तक कुएं में पड़े रहे जो है, लेकिन वो क्या बोले, फिर भी मुझे स्मरण शक्ति का नाश नहीं हुआ था और मैं आपका स्मरण करता रहा। कह रहे ये मुझे एक सौभाग्य किसी ना किसी प्रकार से जो है मुझे एक अवसर दी कि मैं आपका दर्शन करना चाहता था। ये कुछ इच्छा थी मेरे अंदर और उस इच्छा को मैं इतना सौभाग्यशाली कि आज वो पूरा हुआ। तो ऐसे हो, अब ऐसा मान लीजिए ब्राह्मणों को दान दिया लेकिन एक चूक हो गया, अनजाने के अंदर भी उसका इतना भारी परिणाम उनको जो है भुगतना पड़ा। नहीं तो इसीलिए जो राजा लोग होते थे बहुत डरते थे कि ये ब्राह्मण जो है या वैष्णव है या महान साधु महात्मा है, ये भगवान को बहुत प्रिय, इनके चरणों में कोई अपराध ना हो। तो यही बलि महाराज भी यहाँ पे डर रहे हैं और जो है बलि बलराम जी ने भी रोमहर्षण का जब वध कर दिया तो बलराम जी भी बड़े वो भी थे कि अरे मैंने ब्राह्मण का वध कर दिया, तो सब ब्राह्मणों से पश्चाताप करने के लिए बोलते हैं कि मेरे से एक ब्राह्मण का हत्या हो गया, आप बताइए कुछ पश्चाताप का। हालांकि वो तो भगवान हैं। और फिर एक साल या ऐसे कुछ अवधि तक उन्होंने सब तीर्थ यात्रा किया, सब जगह स्नान किया और उनके पुत्र को आशीर्वाद दिया कि ये दीर्घायु हो, क्योंकि उन ब्राह्मणों ने रोमहर्षण को पहले वरदान दिया था कि आपकी दीर्घायु, आप लंबे समय तक जिए। लेकिन बलराम जी ने उसके घमंड को, अहंकार को देखते हुए उसका वध कर दिया था। ऐसे हम देखते हैं कि चाहे यमराज भी क्यों ना हो, उनसे भी गलती हो गया, किसके प्रति? वो मंडूक मुनि के प्रति। तो फिर गलती हो गया कि ब्राह्मण थे, बचपन में ऐसे उनसे गलत डिसीजन हो गया कि ये तो छोटा बच्चा था, उसको पाप नहीं लगना था। तो यमराज को भी श्राप मिल गया कि आप एक शूद्राणी के गर्भ से दासी पुत्र के रूप में जन्म हो, तब विदुर जी के रूप में आते हैं वो। तो इसीलिए इस श्लोक से हमें ये दो शिक्षा प्राप्त होती है कि एक तो वैष्णवों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति जो भगवान के प्रिय जन हैं उनके प्रति हमसे अपराध को डरना चाहिए, और दूसरा शिक्षा ये कि यदि हमारे पास जो भी सामर्थ्य हो, ऐश्वर्य हो, बल हो, स्वस्थ शरीर हो, तो उसको हमें सत्कार्यों में लगाना चाहिए कि कब ये शरीर हमको छोड़ देगा हमें नहीं पता है। और तीसरा एक चीज जो बलि महाराज पिछले श्लोक में बोले थे, झूठ से भी डरते हैं, तो ऐसे हम भक्तों को भी, ऐसे तो हम जानते हैं युधिष्ठिर महान ने भी झूठ बोला है ना, ऐसे हम जानते हैं कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए यदि हमको सत्य को त्यागना पड़े तो त्याग देना चाहिए, बिकॉज वी आर नॉट मंडेन मॉरलिस्ट। लेकिन फिर भी भक्तों को जो है, खासकर भक्त समाज के अंदर हमको सावधान रहना चाहिए कि हम अननेसेसरीली इमोरालिटी को ना अपनाएं, अर्थात जहाँ आवश्यकता भी ना हो जबरदस्ती बस झूठ का जो है सहारा ले लें और फिर उसको एक नकाब डाल दें कि भगवान के लिए हमने ऐसे झूठ बोला। कई बार हम भक्त समाज में ऐसा देखते हैं कि भक्त झूठ बोल के आते हैं जहाँ आवश्यकता भी नहीं होती है ना, और भक्ति का उसको एक गार्ब पहना देते हैं। तो उससे भी हमें सावधान रहना चाहिए कि बोले सत्य बोले, क्योंकि सत्य में एक अपनी शक्ति है जो है। हाँ, जहाँ कोई आपातकालीन स्थिति हो जहाँ बच नहीं सकते वो एक अलग बात है, लेकिन अन्यथा हमें जो है सत्य का हमेशा पालन करना चाहिए। ये भी भक्तों के समाज के अंदर हमें ध्यान चाहिए, और विशेषकर कई बार भक्त समाज के अंदर भी बड़ा जो भक्तों के बीच के अंदर ही कई बार ये झूठ और इस प्रकार के प्रपंच का जो है वातावरण बन जाता है कि किसी प्रकार का झूठ बोलने में या मजाक करने के अंदर, या फिर कई बार हम देखते हैं कि जो है अपने किसी निजी स्वार्थ के लिए हम भक्तों को भी कभी ठग देते हैं, या कभी हमारा भी अनुभव हो किसी ने हमारे साथ कुछ बुरा किया रहेगा या हमने किधर बुरा किया रहेगा, तो हमें उसे बचना चाहिए क्योंकि भगवान बहुत अप्रसन्न होते हैं उससे, और जन सामान्य के ऊपर भी बहुत बुरा उदाहरण पड़ता है और अन्य वैष्णव भी नाराज होते हैं। तो ऐसे ऐसा आचरण से हमको बचना चाहिए, चाहे वो कोई सेवा में सेवा की चोरी हो, चाहे वो किसी प्रकार से धन की चोरी हो, न किसी सुविधा की चोरी हो, लाइक दैट किसी प्रकार ठग नहीं हमको करना चाहिए। ये जो हमारा सामर्थ्य हो उसे भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, नहीं तो वो सामर्थ्य तो अपने आप कभी ना कभी दिन चले जाएगा क्योंकि वो नश्वर है। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद की जय। किसी का कोई एक दो टिप्पणी हो, कोई प्रश्न हो तो आप बोल सकते हैं। यस, जिन भक्तों जाना 9 तो बज गए हैं, आप कृपा करके 7 प्रसंग हम एक प्रश्न या दो प्रश्न ले लेंगे। जी प्रभु।
हरे कृष्णा, बड़े नाइस लेक्चर बड़े जी। ना चाहते हुए कभी ब्राह्मण या वैष्णव अपराध हो जाता है, उससे कैसे बचें? सेकंडली, कलयुग में योग्य ब्राह्मण को कैसे पहचाने और उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, कि वो अपने व्यवहार से या अगर वैदिक नियमों का पालन कर रहा है,
कलयुग में तो अगर ऐसे देखा जाए तो ब्राह्मण को ब्राह्मण होना ही बहुत मुश्किल है, योग्य ब्राह्मण तो, लेकिन कम से कम जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे जो भक्त हैं उनको तो हम जान सकते हैं कि इन्होंने सारे जप तप सब किया है तभी इनको ये जो है हरे कृष्ण जप करने का प्राप्त का अवसर प्राप्त हुआ है। जो भी हरे कृष्ण का जप कर रहे कम से कम उनको मान सकते हैं कि ठीक है अभी ब्राह्मण के गुण नहीं हुए उनके अंदर, लेकिन भगवान की कृपा से पिछले पूर्व काल में कभी उन्होंने कुछ किया रहेगा या फिर भक्तों की कृपा से उनको यह अवसर प्राप्त हुआ है तो वो वैष्णव जरूर हैं। तो उनके प्रति हमको जरूर बचना चाहिए, और विशेषकर जो निरंतर या नियमित रूप से दीक्षा लिए हैं, निरंतर छोला माला का जप कर रहे हैं, चाहे उनके अंदर एक्सटर्नल सत्वगुण के लक्षण ना दिखाई पड़े, मान लीजिए या कुछ मॉरल वैल्यूज ना दिखें अपेरेंटली एज ऑफ नाउ, कम से कम उनको पूरा सम्मान देना चाहिए। दीक्षास्ति चेत प्रणति विष्ट भजनते मीशम, कि वो यदि सिंसियरली, क्यों, क्योंकि जैसे एक हरा आम है तो समय के साथ पक जाएगा, मीठा हो जाएगा, तो ऐसे वो भक्त है कि अभी हो सकता है हमें उसके अंदर कुछ दोष दिखाई पड़ रहे हों, लेकिन यदि भगवान की भक्ति में जुड़ा है तो समय के साथ वो धुल जाएगा। जैसे कीचड़ में पड़ा हुआ व्यक्ति जब यदि शॉवर के नीचे है तो साफ हो जाएगा, जो भक्ति में जुड़ा है तो समय के साथ उसके अंदर वो सद्गुण सब हो जाएंगे, लेकिन वो अपराध से बचना चाहिए ऐसे भक्तों को तो कम से कम। बाकी तो कर्मकांडी ब्राह्मण इत्यादि उनसे भी हमें कम से कम उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, अरे हम वैष्णव हैं तुम ब्राह्मण हो, कम से कम उतना नहीं करना चाहिए, उनको हीन भावना से नहीं देखना चाहिए। ठीक है लगे जैसे भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन और ना उनसे ज़्यादा भी क्लोज संगत करना चाहिए, क्योंकि उनका रुचि रहेगा कर्मकांड के अंदर, धर्म अर्थ काम मोक्ष के अंदर, तो जब संग करेंगे तो हम प्रभावित भी होंगे और फिर हम कंफ्यूज भी हो जाएंगे कि भाई देखो ये तो ये बोल रहे हैं और हमारी रुचि भी धर्म अर्थ काम के अंदर है तो उनका संदेश ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये अंगूठी डाल दो, ये यज्ञ करा लो, ये जप तप करा लो, और भक्त बोलेंगे अल्टीमेट खुशी मिलेगी, बोले वो तो पता नहीं कब मिलेगी, अभी इतना दुख मिल रहा है, तो फिर हम जो है भक्ति के अंदर भी हमारे अंदर मिश्रण आने लगेंगे, कन्फ्यूजन लगेंगे। तो ना ज़्यादा संग करो उनसे और ना उनका कभी अपमान करो। ठीक है तो अब ब्राह्मण कुल में पैदा हुए कुछ तो उन्होंने अच्छा कार्य किया रहेगा, जो भी होगा तो खासकर जो कर्म कांडी और ब्राह्मण ब्राह्मण है उन अपमान करें, ना ज़्यादा क्लोज संगत करें उनसे उनके साथ। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। प्रभु जी आपने बताया कि राजा नृप ने गाय दान की थी तो पृथ्वी पे जो कण है धूल के उनसे भी अधिक मात्रा थी।
मैंने तो रिपीट किया था, ये तो नृप स्वयं कृष्ण को कह रहे थे।
समझा कैसे जाए इसको, क्योंकि कण से आकार छोटा होगा तभी तो इतना स्थान ग्रहण कर सकते हैं।
एक उपमा दे रहे होंगे कि मैंने असंख्य गाय दान में दी थी बेसिकली, जैसे असंख्य का मतलब क्या, इन्फाइनाइट, अभी काउंट नहीं कर सकते, तो ऐसे अनेकों अनेक जो है मैंने गाय दान में दी थी। ठीक
है,
अब ना तो उन्होंने इसका मतलब क्या है कि जितने धूली धरती पे कण को गिन नहीं सकता ऐसी जितनी गाय मैंने दान में दी वो भी को गिन नहीं सकता।
तो जैसे यहाँ पे ब्राह्मणों के बारे में बताया गया है कि इतने शक्तिशाली होते हैं, हम ये भी देखते हैं कि अगर वो ब्राह्मण अपनी पावर मिस यूज करते हैं तो पूरे समाज का जो डाउनफॉल है इसीलिए होता है।
यस,
तो ब्राह्मणों के लिए क्या चेक पॉइंट है कि मिसयूज़
एग्जैक्टली, क्योंकि जब मैं ये प्रश्न प्रिपेयर कर रहा था तो मैंने सारे कॉन्ट्राडिक्टरी पास्ट टेंस पहले लिखे थे। रावण आया किसके भेष में, एक सन्यासी साधु के रूप के अंदर। इंद्र जब आए तो वो ब्रह्मा जी कह रहे इतने सारे अपधर्म तो इंद्र के अधर्म के कारण ही जो है चालू हुए, इंद्र ने भी जो है वही किया।
मॉडर्न ईरा में जितना भी हम देखते हैं कास्ट सिस्टम का डाउनफॉल और जितना भी आर्ग्यूमेंट,
और कली भी प्रवेश किया ऐसा बोलते काशीर में दिखाते हैं परिषद मास के मुकुट वुकुट ने प्रवेश किया, लेकिन प्रभुपाद जो लिख रहे हैं कि वो ब्राह्मण जो था लड़का श्रृंगी उसने अपने ब्राह्मण पद का दुरुपयोग किया, वहीं से कली प्रारंभ हुआ बेसिकली, वो द फर्स्ट विक्टिम ऑफ कली। तो जो है ऐसे में इसीलिए कलियुग के अंदर क्या है, एटलीस्ट मेरी अंडरस्टैंडिंग तो उसके अंदर ये है कि ज़्यादा तो ब्राह्मणों के पास कोई शक्ति भी नहीं, को बोले मैं श्राप देता हूँ, दे दे भाई तुम्हारे श्राप का कोई असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन स्टिल बींग ए सोसाइटी इन एन ऑर्गेनाइज सोसाइटी लाइक इंस्टीट्यूशन दे आर चेक एंड बैलेंस फॉर ऑल द ब्राह्मण आर नॉट टू मिस यूज देयर पावर यू नो लाइक दैट। कलयुग में तो ब्राह्मणों का कोई शक्ति नहीं है, योग्य ब्राह्मण है नहीं तो क्या मिस यूज करेंगे आज की डेट के अंदर, वो कलो शूद्र संभवा। और ब्राह्मणों के लिए जो है नेचुरली हम देखते हैं ब्राह्मणों से तो डील भगवान ही ज़्यादा करते हैं, यू नो डायरेक्टली डील करते हैं, जैसे सनक सनातन ने जब श्राप दे दिया जय विजय को तो भगवान को स्वयं आना पड़ा लाइक दैट। बाकी तो सामान्य जन तो हमने देखा नहीं कि ब्राह्मण अगर गलत भी करता था तो राधा लोग उसके प्रति कुछ खास एक्शन लेते नहीं थे, ब्राह्मण दंड के परे होता था, क्योंकि भगवान के ऊपर एक अकस्मात गलती भी हो गया, उससे कुछ पद का दुरुपयोग भी कर लिया मान लीजिए, तो नॉर्मली हम नॉर्मल केसेज में शास्त्रों में देखते हैं कि ब्राह्मण नॉर्मली दंड से परे होते थे।
जैसे स्कॉन में प्रभुपाद ने GVC को ऊपर रखा टॉप लेवल पे, दैट क्षत्रिय इज बीइंग मैनेजिंग इन वन सेंस ऑल द,
दैट्स अ वेरी डिबेटेबल टॉपिक व्हाट काइंड ऑफ मैनेजमेंट प्रभुपाद वांटेड यू नो फ्रॉम द GVC।
मैं मतलब था कि एटलीस्ट देयर इज अ एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास हु इज हैविंग अ चेक एंड बैलेंस सिस्टम, सो इन द वैदिक सोसाइटी ऑल्सो अगर ब्राह्मण इज मिसयूजिंग हिज पावर डजंट ही लूज हिज स्टेचर एज अ ब्राह्मण।
नेचुरली श्रृंगी को तो बोला जाता है कि क्या विप्र नहीं द्विज बंधु ऐसा वर्ड यूज होता ही, नेचुरली ही लूज हिज स्टेटस एज अ ब्राह्मणा, लेकिन ब्रह्म पावर होती थी उनके अंदर, ऐसा नेचुरली ही लूज हिज स्टेटस एज अ ब्राह्मणा। जय श्री प्रभुपाद की जय। आप सब भक्तों में बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।